क्या बनेगा और क्या बनेगा से भाव क्या होता है, कितने पैसे कमाएगा। नतीजा क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है मां बाप को भी नहीं पूछता। आपने कभी सिखाया ही नहीं, आपको तो एक ही बात रही, पैसा सबसे बड़ी चीज है। कोई आश्रमों से जुड़े हैं तो भी नहीं नहीं पढ़ाई का, फिर पढ़ाई का खर्चा होगा, आश्रम तो हम जाएंगे बड़े होकर देख ले। अरे बड़ा क्या होना, उसने सड़ा ही होना है, एक दिन कब में पड़ा ही होना है। बड़ा तो तब होगा जब चेतना का विकास होगा। आई रियली वंडर, वो आपके अभी भी गए हैं ना, वो एप्पल कंपनी के मालिक कौन थे, स्टीव जॉब्स। जस्ट इमेजिन द होल एम्पायर ही क्रिएटेड, अ बिग शॉट एंड गॉन इन अ फ्लक्स, व्हाट इज दिस। और अब जब अगली बार आएगा तो वो भी शायद एप्पल का कंप्यूटर यूज करके कहेगा चीज तो बहुत बढ़िया है। जस्ट इमेजिन, इट्स अ फैक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, वो लक्ष्य। तो चलो, पुराने जमाने की जो व्यवस्था थी अब तो रही नहीं, लेकिन जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी तो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था कि भाई आप इंद्रियों को संयमित करके, यानी कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करके। और वो कैसे होगा, अपने आप तो हो नहीं सकता, तो गुरु आज्ञा में रहकर। सिंपल तरीका है, तो गुरु आश्रम में रहते हुए, गुरुकुल में रहते हुए विद्या अध्ययन करते थे, 25 साल अध्ययन किया। उसके बाद समाज में तब भी व्यवस्था थी, बच्चे को पूछते थे भाई दिमाग में बढ़ गया कि नहीं, लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि नहीं, वो कहता जी अभी थोड़ी कसर है जी। ओ बॉस को कहते हैं जी सानू पता जी जीवन का लक्ष्य तो एक परमात्मा है, पर की करिए जी हुन दुनिया च इतना कुछ तो देखना ना, जे परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो करना तो पो ना माड़ा मोटा। एक सहज होता है ना ऐसा। तो उस समय भी प्रश्न होता था कि भाई बताओ आपके दिमाग में लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नहीं, अगर हो गया सीधे संन्यास में प्रवेश, अगर नहीं हुआ 1 साल का क्रैश कोर्स होता था गृहस्थ आश्रम के बारे में पढ़ाने के लिए। और आजकल क्या होता है, मर मर्जी से शादियां हो जाती हैं, बाद में झगड़े होते हैं, बच्चे किसी काबिल नहीं रहते, क्यों पता ही नहीं गृहस्थी नाम किस चीज का है। आश्रम तो दूर की बात है, गृहस्थ का नहीं पता। और आजकल तो फैशन चल पड़ा है, आई डोंट वांट टू मैरी, कम ऑन, छुट्टे जानवर की तरह घूमोगे तो आवारा कहे जाओगे, समाज के लिए खतरा बन जाओगे। अगर समाज में रहना है तो व्यवस्था के अनुसार चलो, या तो शादी करो गृहस्थ में जाओ, नहीं तो आ जाओ भाई, कौन रोक रहा है आपको। तो वो जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उसमें वो तरीका होता था कि जगह गृहस्थ में रहना है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन किस प्रकार से गृहस्थ में रहोगे कि आपका मन बहिर्मुखी ना हो जाए। तो एक पत्नी या एक पति व्रत कि भाई चलो परमात्मा की नहीं मानी जाती, दिखता नहीं, गुरु की नहीं मानी जाती, क्यों मन हमारा भटकता है। अरे कम से कम पति पत्नी आपस में तो मान लो, मन मर्जी तो नहीं रहेगी यार, कंट्रोल एक अंकुश तो बन गया ना, अब उस अंकुश यानी कि मर्यादा। तो जब तक हमारे यम नियम नहीं होते तब तक ये काम क्रोध लोभ मोह नहीं जीते जा सकते। सीधी सी बात है भाई, हम कल ही देख रहे थे बच्चे यहां पर फिल्मी गाना लगाकर आसन दिखा रहे हैं, क्यों फोटो खींचने को रहे खड़े यहां पर। तो योग को लेकर भी बहिर्मुखता बनती है, नहीं बनता वो लक्ष्य, क्योंकि योग का नहीं पता अभी। तो खैर, क्योंकि प्रश्न बड़े संजीदा हैं इसलिए बात संजीदा चल रही है, अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो बता दो, यहीं रोक देते हैं। हां जी, बात गंभीर चल रही है, अगर चले आगे चले कि यहीं रोकते हैं। हाँ गंभीर बात है, थोड़ी हाजमा अपना दुरुस्त कर लेना भाई, क्योंकि फिर हम जो मुद्दे की बात आती है तो फिर हम वो दया धर्म छोड़ देते हैं, सत्य के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं चलता है हमारा। तो खैर, तो वो तरीका है। तो आज की दुनिया में अगर हम चाहते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीजों से सच में बचना चाहते हैं, और जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं और आत्मिक शांति चाहते हैं, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक सीधा सा है, वो उस प्रश्न में आ जाता है कि जीवन का लक्ष्य। तो लक्ष्य तो एक परमात्मा है, और वो परमात्मा कैसा, वो जी ऊपर बैठा, ऊपर कहीं नहीं बैठा, यहीं बैठा, इसी के ऊपर बैठा है। वो परमात्मा सचित आनंद स्वरूप है। सोच के देखो, ध्रुव की उम्र कितनी थी, 5 साल की थी, जंगल में गया, एक चोट लगी समाज में, उसको चोट लगी, गया, और उसकी जिज्ञासा थी, वो अधिकारी था, तो नारद जैसे देव ऋषि खुद उतर के आए उसको मार्गदर्शन देने के लिए। मार्गदर्शन मिला, साधना में डट गया, करते 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 क्या हुआ, अंदर बिल्कुल तल्लीन हो गया, सबने पढ़ा होगा, एक पैर पे खड़े होकर साधना कर रहा है, पहले पत्ते खाता था फिर वो भी छोड़ दिया, पानी पीता था वो भी छोड़ दिया, वायु भक्षण और अंत में वायु भी छोड़ दी, यानी कि वो गहन समाधि की अवस्था। हमें हंसी आती है लोग जब यहां पर आकर समाधि की बात करते हैं, जी मुझे लगता है मेरी समाधि लग गई। अरे समाधि लग गई तो सारे संशय मिट जाएंगे, बहुत गंभीर अवस्था है। समाधि का मतलब है कि सारी चेतना सारे चित्रों से वहां जाकर केंद्रित हो गई। तो खैर वो ध्रुव की सारी चेतना वहां जाकर केंद्रित हो गई, संबंध बन गया, तो अंदर ही अंदर पोषण मिल रहा है, अंदर ही अंदर रस मिल रहा है, बाहर से कोई जरूरत नहीं है, और अंदर वो उसके भाव के अनुसार भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप दर्शन हो रहा है। और सृष्टि संकल्प संकल्पात जायते, सृष्टि संकल्प से बनती है भाई, तो जब पूरा अंदर दृढ़ हो गया तो वो साकार मूर्ति भी परमात्मा के सामने। लेकिन ध्रुव अभी अंदर है तो परमात्मा ने खींच ली उसकी सूरत बाहर। अब जब उसको दर्शन हुए भगवान के चरणों में नत हुआ तो क्या हुआ, कभी गौर किया? जैसे ही दर्शन हुए उसके मुख से वेदों की ऋचाएं फूट पड़ी और हम कहते हैं हमको दर्शन हो गए, काम करो लोगों बने हुए दर्शन हो गए, समाधि लग गई। अरे भगवान के दर्शन, सूर्य देव निकलते हैं, सारे कपड़े उतर जाते हैं, वाह गर्मी हो गई, बढ़िया हो गए, अभी ठर कर रहे थे, और वो जो सूर्योदय का सूरज है उसके दर्शन हो गए, तो वो ध्रुव के जीवन में कि वो दर्शन हुए और देखो क्या हो गया, कि वो ध्रुव सारा ज्ञान उसको हस्तामलकवत हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, वेदों की ऋचाएं फूट पड़ी, कोई कॉलेज स्कूल पाठशाला नहीं गया, तो वो सारा कुछ सामने हो गया। तो जब सच में चेतना वहां पर जाती है तो ये बाहर की छोटी छोटी चीजें कभी नहीं भटकाती। हां जनक की तरह हम कर सकते हैं कारोबार सारा, लेकिन अगर लक्ष्य वहां बन जाए तो, और फिर करो ठीक है अपने धर्म के अनुसार जहां परमात्मा ने रखा है, अपना कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन लक्ष्य अगर स्पष्ट है तो चेतना बहिर्मुखी होगी ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन कब होता है? चॉकलेट खाने का मन था, अब पढ़ाई भी करनी है, चले खा ही लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है कि वासना है, आकर्षण है, नहीं तो आप यहां बैठे हुए चाइनीज आकर बात करेगा डिस्ट्रैक्ट हो गए, नहीं हो गए, समझ नहीं आती, लेकिन वो बातें समझ में आती हैं इसलिए खींचती हैं। वो हमें एक हमारे प्रोफेसर हैं परिचित, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो बताते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा ही है। आप सोच सकते हो हमारे साथ जुड़े तो कैसे होंगे, बड़े ही प्रोफेसर हैं लेकिन दो जुड़ी सफेद कपड़ा रखते हैं, खड़ाओं में कॉलेज जाते हैं, बच्चों को यही पाठ पढ़ाते हैं। तो अभी उनका एक चेला मिल गया 12 साल बाद कॉलेज से पास आउट होने के बाद, कहता है क्या गुरु जी आपने हमारी जिंदगी पर बात कर दी, आजकल आज तक साइकिल पर चल रहा हूं, बाकी सारों की बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, बंगले हो गए, गाड़ियां हो गई, मैं आज तक साइकिल पर हूं। खैर मजाक कर रहा था क्योंकि वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। तो ये जब तक लक्ष्य नहीं बनता कि हाँ वो परमात्मा, तब तक इन विकारों को जय नहीं कर पाएंगे। नंबर दो बात, अगर परमात्मा हमारे अंदर है दूसरे के अंदर है कि नहीं? सभी के अंदर है भाई, तो प्यार का व्यवहार हो। और शुरुआत कहां होगी? सबसे पहले नंबर पर ये शरीर, इस शरीर से प्यार करें। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं लिपस्टिक पाउडर क्रीम और हेयर जेल, नहीं, प्यार का मतलब वो नहीं, वो तो धोखा है अपने आप से। क्यों? अरे यहां पर खारिश हो गई और उसको छिपा के रखोगे, खारिश बढ़ जाएगी, अंदर से उसको मिटाओ दूर करो। तो हमारे शरीर में कोई कमजोरी है तो अंदर इतना तेज पैदा हो कि वो अपने आप चेहरा चमके, अंदर इतनी ताकत हो रोगों की जरूरत ही नहीं। हम तो कई बार हमें आश्चर्य होता है, डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, लेकिन हमारा ये प्रश्न होता है अगर डॉक्टर को ठीक करना आता है तो खुद रोगी क्यों हुआ? और यही प्रश्न हम योगियों से भी करते हैं कि अगर आप कहते हो कि आप योग गुरु हो, योग का पहला अंतराय है व्याधि, कहां से आ गई? दाल में कुछ काला है, निकालो भाई इसको बाहर निकालो। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं, हमारी कसौटियां हैं, कसौटियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन देखना होगा और तभी देखेंगे जब लक्ष्य होगा। तो खैर वो जो तरीका है, पहली बात शरीर को, तो शरीर को प्यार करने का मतलब क्या है कि शरीर को, हाँ बच्चों से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को खिलौने भी और ये भी और वो भी सब कुछ देते हैं, क्यों? कहीं मांगने ना जाए, दूसरे का देखकर ना ललचाए, अपने आप पे कंटेंट रहे वो, यही तो भावना होती है ना। तो फिर ये शरीर है इसको क्यों गुलाम बनाते हो? हाय बड़ी भूख लगी है, हाय बड़ी भूख लगी है, ओ ज्यादा खा लिया, फारा हो गया। बताओ क्या है? नहीं मिला तो हाय हाय, मिल गया तो हाय हाय, फिर आज ये चाहिए कल वो चाहिए, गुलामी। तो शरीर को गुलामी से मुक्त बनाओ, शरीर में इतनी शक्ति जगाओ कि ठीक है खाने पीने को मना नहीं कर रहे भाई, खाओ डटके खाओ, लेकिन पचाने की ताकत तो जगाओ। ये हो कि मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तो क्या परवाह, इतनी ताकत तो अंदर हो ना। सर्दी है सुबह देखते हैं, एक सूत्र होता है रिलैक्स हो जाओ, देखो सारी सर्दी दूर हो जाती है। रोज अपने देख ही रहे हैं कि सारे ठुठुर करते होते हैं, बस वहां पहुंचे एक बार एक बात कहते हैं सारे रिलैक्स हो जाते हैं। तो सारा यहां पर ही है, फाइन ट्यूनिंग करनी है खाली। तो शरीर के अंदर इतनी ताकत हो, अब जैसे गुरुजी पहाड़ों पर ऐसे ही रहते हैं, उन्होंने कौन सा वहां पर जींस जैकेट डालनी है, इनर पहनना है वार्मर पहनना है, मतलब ही कोई नहीं है, हम लोग भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। तो इतना ताकत अंदर पैदा हो जाए आश्रम में, ऐसा मतलब खाली बातें नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो साधनाएं हम लोग करते हैं, जैसे गुरुजी ने 2005 में खाना पीना जरूरत खत्म हो गई छोड़ दिया था, ठीक है पानी पीते हैं कभी कुछ छुटपुट, कभी 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 मतलब वंस इन अ ब्लू मून, क्यों कुटिया बंद रहती है, एक महीने में एक बार निकलते थे, अब तो खैर उन्होंने पूर्ण एकांत ले लिया पहाड़ों पर। तो खैर हम लोग साधना शिविर भी लगाते थे, ऐसे स्पेशल कैंप 7 दिनों का शिविर, क्योंकि डॉक्टर्स की एक फिलॉसफी है कि अगर 3-4 दिन बॉडी को पानी ना मिले तो बॉडी में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं, है ना, और फिर करते करते पेशाब में खून भी आ सकता है, कहानी गड़बड़। तो जो भूख हड़ताल करते हैं उनको 3rd या 4th day उठाकर डाल देते हैं हॉस्पिटल में, एक नॉर्मल थंब रूल है। लेकिन वहां पर जो साधनाएं हम लोगों ने करी, तो 7 दिन के लिए एक बड़े से हॉल में हम लोग काफी लोग थे, 60-65-70 लोग, कई बार कैंप किया, 5 बार कैंप लगाए ऐसे। तो उसमें हमारे 3 ग्रुप होते थे, एक ग्रुप तो हमारा जो कोर प्रैक्टिशनर गुरुजी हम लोग सारे 9-10 लोग होते थे, सेकंड ग्रुप होता था जो एडवांस प्रैक्टिशनर, 3rd ग्रुप जनरल प्रैक्टिशनर्स। तो 1st ग्रुप जो होता था 7 दिन और रात उसी हॉल में सबके सामने 24 घंटे वहीं पर, पानी की एक बूंद भी नहीं। जो 2nd ग्रुप होता था उसे केवल पानी मिलता था, जो 3rd ग्रुप होता था उसको 1 गिलास छाछ भी देते थे। ये 3 ग्रुप होते थे और सबके सामने डॉक्टर्स भी आया करते थे, मीडिया भी आता था, सब लोग, ज्यादा तो नहीं क्योंकि हम लोग गांव में काम कर रहे थे और कोई प्रचार नहीं करते, तो जो परिचित किसी को पता जिज्ञासा होती थी वो लोग वहां पर आते थे, देखते थे वो सबके सामने, पर वो साधनाएं हैं। और फिर होता है कि नहीं भाई वो अंदर सिस्टम स्लगिश हो जाएगा, कई बार ऐसा हो रहा था कि 7 दिन पानी भी नहीं पिया, मजे की बात एनर्जी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। 7 दिन ऐसा अनुष्ठान करने के बाद एनर्जी टेस्ट होते थे, पता है क्या, जो योग के स्टूडेंट सोच के देखना इस बात को, नौली घुमानी है हमने बार बार, 108 का टारगेट होता था, 108 बार एक सांस में 108 का टारगेट होता, नौली घुमानी है उस अवस्था में। दूसरी बात सुनो, पद्मासन लगाकर हम लोगों की रेस होती थी कि पद्मासन लगाकर बिना सहारा लिए इस तरह पॉप पॉप करते हुए हमने करनी है, एक ही छलांग में पद्मासन में घूमकर वापस वहीं पर स्थित हो जाना है। इस तरह के एनर्जी टेस्ट होते थे 7 दिन बिना पानी के रहने के बाद। और पानी के बिना रहने का मतलब ये नहीं कि पड़े हुए, नहीं, दिन भर टोटली एक्टिव रहते थे हम लोग, अपनी क्रियाएं साधनाएं सारा वहां पे करते थे, रात में केवल 2 घंटों के लिए लेटते थे 7 दिन तक। लंबा भी करते हैं पर एकांत में, पर जनरल में 7 दिन ही किया, तो वो एक साधना थी। और कोई भी कर ले, इसीलिए ओपन था, जो मर्जी आके कर लो सीख लो, तो इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स अ साइंस ओनली इफ यू नो इट। एक बार किसी ने कहा नहीं जी फिर सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है, डॉक्टरों की थ्योरी है ना एचआरएम के बारे में और माताजी के बारे में कि नहीं जी वो एक बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, तो वो भी प्रूफ किया। एक बारी फिर क्या किया, लोग कहते हैं कि नहीं सिस्टम स्लगिश हो जाता है, 7 दिन तो पानी की एक बूंद भी नहीं, 8वें दिन सीधे ही छोले भटूरे, तगड़ी पंजाबी डाइट, और सारा कुछ सिस्टम बाकायदा हजम भी हुआ, सुबह क्लींजिंग भी प्रॉपर हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम इनएक्टिव नहीं, ज्यादा एक्टिव हो गया। तो वो तरीके हैं। तो इस प्रकार से करते करते तो ये है कि अंतर में, तो शरीर में इतनी शक्ति जगाएं कि अपनी शर्तों पर जी पाए, इंडिपेंडेंट बनाए। भाई जो मुक्ति की बात है ना, अरे मुक्ति तो भाई पूर्णता घटित होगी जब होगी, तो हमारे शरीर के 5 कोष हैं, खाली मन में मुक्ति नहीं होती, मुक्ति का मतलब है कि 5 कोशों में मुक्ति, डिपेंडेंट खत्म, सारी डिपेंडेंस हो जाए, इट हैज टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, देन ओनली यू विल बी कंसीडर्ड एज मुक्त, मोक्ष, अदरवाइज नो, सॉरी। तो ये तरीका है। तो जब ऐसे अंदर में शक्ति बने फिर क्या होगा, पहली बात तो अगर लक्ष्य बन जाएगा तो अपने आप ही प्यार हो जाएगा, नहीं तो घर परिवार में माता पिता हैं उनका सम्मान हो, बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान हो, और भी जो है उनसे प्यार से, ये नहीं कि अपनी डिमांड मैं तो बकरी करती है भाई, बकरी के बनते हो आदमी बनो ना, तो वो तरीका है। तो जब इस प्रकार से प्यार से सद्भाव से हम व्यवहार करेंगे, तो जैसे भी मास्टर मातक जी अभी कह रहे थे कि वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इस करके अगर ऐसा हम बर्ताव रखेंगे तो अपने आप ही, अब पहले क्या होता था, घर में कोई बंटवारा नहीं होता था, चार भाई हैं तकरीबन, पुराने जमाने में अगर आप देखो अपने एक दो पीढ़ी पीछे जाओ तो तकरीबन जो लोग होते थे अपने माता पिता को माता पिता नहीं कहते थे, कोई चाचा कह रहा है, कोई ताया कह रहा, क्यों, दूसरे बच्चे बोल रहे हैं सुन के बोलना शुरू कर दिया, और कोई उनको करेक्ट भी नहीं करता था, क्यों, वो इंडिविजुअलिटी थी ही नहीं। पर खैर कलयुग है, कलयुग का सिद्धांत है कि अपने पैरों पर ही खड़े होना है, तो वो इंडिविजुअल सेंस होने में बुराई नहीं है, लेकिन उसको नैरो तो मत बनाओ, इंडिविजुअल को सेंटर बनाकर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड तो करो, सबको मिलाओ तो सही, सबसे मिलकर तो चलो, वरना तो जानवर बन गए, जब मर्जी खाया, जब मर्जी घूमे, जब मर्जी पिया, जब मर्जी सोए, वो तो जानवरों की जिंदगी है, इंसान थोड़ी ना होता है वो। तो वो जो मूल धर्म है उनका पालन करें, तो पहली बात लक्ष्य बने, दूसरी बात अपनी इंद्रियों का मन का संयम करें, उनको अंतर्मुखी रास्ता दिखाएं, और तीसरी बात अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक करते जाएं। हाँ बहुत बार नहीं जी साटा का मतलब साधना करना है, सातों माता मुनि होंगे, कई बार लोग कह देते हैं ना कि नहीं भाई, अरे हम ब्रह्मचारी हैं हम ये काम कैसे करें, हम सन्यासी हैं हम ये काम कैसे करें, नहीं, चलाकर जाने के काम करने की बात नहीं कह रहे, लेकिन अगर कोई सेवा आपके पास आई है उसको अच्छे से करो। आप लोग आश्रम में रहते हैं, झाड़ू बहार अपने आप ही करते हैं, आश्रम में कोई नौकर नहीं है, नौकर का क्या मतलब होता है भाई, अरे हम परमात्मा के खुद नौकर हैं तो हम कैसे नौकर रख सकते हैं आगे, तो स्वयं सेवा, और जो भी आता है उसकी सेवा करो। तो हम लोग भी अपने आप में अगर अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझते हैं तो इस प्रकार से कि अपना हमने क्या करना है उसकी बात करें। डिस्ट्रैक्शन कब होता है, हमारी बातें सुनेंगे, किसी तीसरे आदमी से पूछेंगे स्वामी जी ऐसे कहते थे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इसका मतलब है कि स्वामी जी विश्वास है नहीं आपको, बात छोड़ो ना, फिर आप जिससे पूछा है उसी को वापस जाके पूछो, क्यों वो बताएगा, क्यों बताएगा उसने ऐसे क्यों कहा था, दूसरे व्यक्ति को क्या पता। पुराने जमाने में क्या, आज भी इसीलिए कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं होती, गुरु का मतलब क्या होता है, एक परंपरा, कि वो जो परंपरा चल रही है एक, हम उस परंपरा से जुड़ गए, अब ठीक है सारा व्यवहार करते हैं लेकिन हमारी जो प्रगति होगी उस परंपरा के अनुसार करते हुए, आजकल की तरह नहीं ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, टीचर अलग होता है, स्पिरिचुअल टीचर अलग होता है, मास्टर, डोंट प्ले विद वर्ड्स, व्हाट इज दिस। तो वो तरीका होना चाहिए, लक्ष्य हो, साधना हो, मार्गदर्शन हो, लेकिन तीन चीजें हैं दुनिया में, एक तो ईश कृपा, ईश्वर की कृपा, वो तो मिल गई, मनुष्य शरीर मिल गया, थोड़ी समझ मिल गई, थोड़ी प्रेरणा मिल गई, दूसरी गुरु कृपा, तो उसमें 50-50 होता है, हमारे संस्कारों के अनुसार गुरु की कहीं ना कहीं झलक तो मिल जाएगी, संयोग जुड़ाव तो हो जाएगा, लेकिन अब उस मौके का फायदा उठाना यानी उनके साथ जुड़ जाना वो हमें करना पड़ेगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, अपनी कृपा, पहली कृपा परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, दूसरी गुरु कृपा संयोग बन गया मार्गदर्शन का, लेकिन तीसरी जब तक नहीं होती अपनी कृपा तब तक बात नहीं बनती। तो ये तीन चीज चाहिए, जब ये तीन होंगी सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक जो बात हो रही थी वहां पर योग सूत्र की, तो खैर हमने कई बार कहा कि चलो कभी देखेंगे अगर मौका लगा तो, या तो किसी कॉलेज में या फिर यहाँ ऋषिकेश में योग सूत्रों का एक कोर्स रख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत डीप है और आजकल समस्या वही है, खुद तो हमने डायबिटीज है, मीठा खाया नहीं है, दूसरे से कहते हैं मीठा बहुत अच्छी चीज है, वो समस्या आती है, खुद तो गोता लगाया नहीं है और योग सूत्रों की व्याख्या करने लग जाते हैं, वहां समस्या आती है। तो खैर जो थोड़ा बहुत गुरुमुख से सुना है, जिसका हम अभ्यास करते हैं, उसके आधार पर आपको बता सकते हैं ये संयम का मतलब क्या होता है, जो उसमें बार बार संयम विभूति पाद में है, बहुत विभूतियां हैं, संयम का मतलब क्या होता है, संयम का मतलब है अपनी चेतना को वहां पर स्थापित कर देना, सीधी सी बात है। तो वो जो सूर्य है इस सारे भुवन मंडल का संचालक है, जब हम अपनी चेतना को वहां पर स्थापित कर देंगे प्रत्यक्ष हो जाएगा हमें, इसी प्रकार है सारा कुछ ही, हस्तानी ओके हस्त बलेश ना, तो जहां पर भी हाथी के बल में, हाथी में संयम करेंगे उसके बल में संयम करेंगे हमारे अंदर बल आ जाएगा। तो जहां पर भी अपनी चेतना को, क्यों? क्योंकि तब हम शरीर की हदबंदी से मुक्त हो गए हैं, उस दैवीय चेतना से जुड़ गए हैं जो घट घट में है, तो हम जिस भी घट में अपनी चेतना को केंद्रित करेंगे वो हमें प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये एक सीधा सहभूति का जो लक्षण है, लेकिन एक एक को छोड़ दें, जब वहां पर हम केंद्र में ही पहुंच गए, वहीं स्थित हो गए, तो सारी विभूतियां अपने आप आवश्यकता अनुसार प्रकट होती जाती। लेकिन आवश्यकता अनुसार, योगी कभी विभूतियों के पीछे नहीं भागता, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें होगी नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना, हमें हंसी बहुत आती है, नहीं जी ये कुंडलनी जागरण ही तो हठ योग में होता है। जैसे हठ योगी का शरीर कुछ और होता है, वेदांती का शरीर कुछ और होता है, भक्त का शरीर कुछ और होता है। अरे क्या मजाक है भैया, वही शरीर है, वही परमात्मा है, तो रास्ते अलग अलग कैसे हो गए? ज्ञान योग के द्वारा हम बुद्धि को पूरा अपने प्रयोग करते हुए ऊर्ध्व केंद्रों से अंतर जा रहे हैं, भक्ति के द्वारा अपने दिल को पूरा पिघलाते हुए यहां से अंदर जा रहे हैं, योग क्रियाओं के द्वारा निचले केंद्रों को शुद्ध करते हुए यहां से अंदर जा रहे हैं। जाना तो अंदर ही है भाई। अब एक हॉल के चार दरवाजे हैं, जिस मर्जी दरवाजे से अंदर जाओ पहुंचोगे तो हॉल में, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। किसी भी भक्त का, योगी का, वेदांती का, ज्ञानी का आप जीवन उठा के देख लो, सब कुछ मिलता है। मीरा के पदों में देख लो, योग की इतनी ज्ञान युक्तियां हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े भक्त हो गए। शंकराचार्य जी, जितने मर्जी नाम गिना लो, जितने मर्जी, ज्ञानेश्वर जो मर्जी नाम ले लो, सबका ही नुक्ता एक ही है। प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तरह तरह के खेलकूद होते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, फोकस बढ़ता जाएगा, सीरियसनेस बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। तो इसमें सारा कुछ ऐसे होता जाएगा, और जब फोकस क्लियर हो गया तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अंदर हम पता है हमको कछुए की तरह कि भाई अंदर सारा हमारा सेफगार्ड है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हमारा ख्याल है कि सभी के प्रश्नों के उत्तर आ गए यहां पर, कोई शंका तो नहीं रही ना अभी? बस एक ही समस्या है कि एक स्वामी रामलिंगम का नाम सुना है आपने? वो एक ऐसा ऑथेंटिक केस है कि उन्होंने शरीर समेत इस दुनिया से प्रयाण किया था। मद्रास में 1850 के आसपास की बात है, वडलूर में, वहां पर उनका जन्म स्थान है, सिद्ध संत थे। तो जाते जाते वो एक बात कह गए थे, पता है क्या कहा था उन्होंने? बहुत मतलब उनके अंदर दिव्य शरीर थे, उनके जो ग्रंथ हैं उसमें सारा बिल्कुल स्पष्ट होता है। दिव्य शरीर का जो इतना सुंदर उन्होंने विश्लेषण दिया हुआ है कि बिल्कुल प्रत्यक्ष, उनका अपना जीवन ऐसा था। और मजे की बात बता दें, सूर्य साधना करते थे वो, जो आप सबको बताई है यहां पर, अग्नि साधना भी वो करते थे, कई मौका लगा वही बताएंगे। पर खैर जो बात थी वो कहते हैं, हमने दुकान खोली थी, कोई खरीदार मिला नहीं, इसलिए चलते हैं, फिर कहीं मौका आएगा तो फिर आ जाएंगे। तो समस्या एक ही है, ऐसा नहीं है। लोग, बहुत से लोग कहते हैं नहीं आजकल पता नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं है। सच्चाई आज भी है, साधनाएं आज भी हैं, जिज्ञासु कहां है, समस्या ये है। तो अंदर वो जिज्ञासा पैदा करें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा से ही ब्रह्म का अनुसंधान प्रारंभ होता है। तो वो लक्ष्य रखें, रास्ते खुलते जाएंगे। और हाथी के पांव में सबका पांव, अरे अगर ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो दुनिया का कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो उसमें नहीं आता, सब कुछ। महर्षि अरविंद कहते होते थे, कहते हैं एक योगी एक बार ऐसे किसी मैगजीन के लिए उनको रिक्वेस्ट आई कि भाई कॉलम लिख दो एक, बोले ठीक है लिख देंगे। बोले आप तो ऐसे करोड़ से आप एक्सपर्टाइज हो। कहते हैं भाई योगी वही हुआ जो परमात्मा से जुड़ गया, और जो परमात्मा से जुड़ गया सारी धाराएं तो वहीं से आ रही हैं, ज्ञान का तो वो स्रोत है, तो उसने तो गोता लगाना है और सारा कुछ पा लेना है। हमें ख्याल है महाराज बताते हैं, तकरीबन ये बात होगी 40 साल पहले की, एक बार एक बारों में एक खबर छपी थी कि एक कोई फॉरेन टूरिस्ट थे, उनका बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, वो लोग वहां रुके, तो जंगल में ऐसे ही वो लोग आसपास जा रहे थे, कोई भी टाइम लगने वाला है, तो रास्ता भटक गए, तो वहां पर उन्हें कोई संत मिले। तो ये जो ग्रुप था उसमें कई देशों के अलग अलग जगह के लोग थे, तो संत मिले तो उन्होंने रास्ता पूछने की कोशिश करी। तो मजे की बात है कि जिस व्यक्ति ने जिस भाषा में प्रश्न पूछा उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया, तो सारे हैरान रह गए। उनसे पूछा तो बोले कि भाई जहां से भाषाएं पैदा होती हैं वहां से हम जवाब देते हैं। तो ये मतलब बच्चों का विषय नहीं है, लेकिन बच्चे ही इसको कर सकेंगे। क्यों? अगर हम बड़ों से ये बात कहें कि भाई क्या मृत्यु से मुक्ति चाहिए, नहीं जी मरना था बहुगा जी, हाँ जातस ही ध्रुव और मृत्यु। किसने कहा, किसने ये प्रमाण दिया कि जातस ही ध्रुव और मृत्यु? भगवान कृष्ण ने कहा ना, साथ ही तो वो कह रहे हैं कि भाई अमृत पद तो मैं हूं, मेरे पास आ जाओ, साथ ही तो वो कह रहे हैं। तो ये बात समझे स्पष्ट रूप से, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होती है। पैदा कौन होता है? ये स्थूल आवरण, इसकी मृत्यु होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ही अमर होती है, नहीं। अगर इस स्थूल आवरण को पूरा भंग कर दिया जाए, यानी कि रूपांतरित कर दिया जाए, इसकी स्थूलता खत्म कर दी जाए, तो क्या होगा? ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। अगर वो योग अग्नि सच में प्रचंड हो जाए, रोम रोम में भर जाए, ये पृथ्वी और जल पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, न रोगो, रोग नहीं होगा उसको, ना जरा, बुढ़ापे का तो मतलब ही नहीं, ना मृत्यु। ये वेदों का प्रमाण है, कोई कैसे झुठलाएगा। और हां एक बात और है, एक कॉमन सी सरल सी बात है जो कोई बच्चे को समझ में आ जाएगी। अगर हम सबको मरने के लिए ही बनाया था तो भगवान से बड़ा मूर्ख कोई होता? अगर जीवन की परिणति मृत्यु में ही होनी थी तो इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता था? नहीं। मृत्यु का मतलब क्या है? फेल हो गए हो, दोबारा उसी क्लास में आना पड़ेगा। पास तो तभी होंगे जब जीते जी, जीवित मरे मरे पुनि जीवे तामो खंतर पावे। जीते जी हमें वो स्थिति प्राप्त करनी होगी, तभी मोक्ष होने वाला है, वरना तो बस कबोल कल्पनाएं हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं। तो खैर बुराई नहीं है, कहानियों से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलने से इंसान चलता है, और जब चलता है तो रास्ते निकलते हैं। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इज जस्ट परफेक्ट। बट हाँ, थोड़ी सी हल्की बात करते हैं, लेकिन बात काम की है। टीवी पे एक ऐड देख रहे थे, अपनी प्यास बढ़ाओ। तो आई आस्क ऑल ऑफ यू, अपनी भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ परमार्थ की, भूख बढ़ाओ आनंद की, भूख बढ़ाओ शक्ति की। भूख बढ़ाओगे, देने वाला बैठा है, देगा निश्चित रूप से इस बारे में। तो हमारा ख्याल है आज के लिए इतनी सेवा स्वीकार कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो